صلوات علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین. اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بہا الاسلام و اہلہ وتذل بها النفاق واهله وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والاخره. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات على محمد وعلى محمد. اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وقال الله سبحانه وتعالى ايضا، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الدين عند الله الاسلام. صلوات على محمد وعلى محمد. الحمد لله، you people have managed to reach Imam Bara. Although despite of bad weather and traffic jam, ajrukum ala Allah. I pray for all of you and inshallah God will reward you bihaqq Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah, we discussed last night some basic points regarding the introduction of the holy book. And particularly we tried to emphasize on the sequence of the Holy Quran and to discuss about the sequence of recitation and sequence of the revelation. And I tried to explain that there is a difference between the sequence of recitation and sequence of revelation. The sequence of recitation as we see today, although it was compiled at the time of the Holy Prophet according to many scholars, but it is not the same as the sequence of revelation. The very first revelation, اقرأ بسم ربك الذي خلق, we see today in the 30th para. And the first surah, Surah Fatiha, according to sequence of recitation, we see in the beginning. Now here comes the point, and I would like to discuss when actually the Surah Mubarakah Fatiha was revealed. But before that, I would like to read before you few ahadith of Masumeen, just in order to share the importance of this surah in the eyes of Masumeen, as they have explained the importance of this surah. And a little later, inshallah, I would like to discuss this point, that when actually the Surah Mubarakah Fatiha was revealed. There are many ahadith regarding Surah Mubarakah Fatiha, its importance, its significance, discussing its effects on the spiritual life of a human being and physical life of a human being. I am not going to share each and every hadith, but few of them. In one of a very famous ahadith, Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salatu wassalam, Maulay Kainat in his unique way explains the importance of Surah Mubarakah Fatiha. And in this hadith, not only the importance of Surah Fatiha, but also the importance of Bismillah ar-Rahman ar-Rahim is discussed. Maulay Kainat says, Kullama fil Quran fil Fatiha. Whatever God has revealed in the whole book, the complete Quran, that is condensed in Surah Mubarakah Fatiha. And the hadith continues, and Maulay Kainat says, Hazrat Ali alayhi salam, he says, kullama fil fatiha fil basmala, that whatever is in Surah Fatiha is concentrated in Bismillahir Rahmanir Rahim. The basmala, this is a title given for this sentence, the ayah, this Bismillahir Rahmanir Rahim. And it is very common in Arabic that even sentences are given names and titles. For example, Bismillahir Rahmanir Rahim is called basmala. There is another very famous sentence, La hawla wa la quwwata illa billah, Al Aliyyil Azim. This whole sentence is given one title, Hawqala. And similarly, there are few sentences in the Azan, Hayya ala salah, Hayya ala al-falah, Hayya ala khair al-amal. They are collectively called Hayala. So it is very common that many occasions we see that even the sentences are given the titles. Similarly, Bismillahir Rahmanir Rahim, it is called, even in the Ahadith we have seen that Basmala, the word Basmala is used to denote the whole sentence Bismillahir Rahmanir Rahim. Now, to complete this Hadith, Maulai Kainat says, Kullama fil Quran fil Fatiha. Whatever the God has revealed, His message, His instructions, they are condensed in Surah Mubarakah Fatiha, this opening chapter of the Holy Book. And then he says, وَكُلَّمَا فِي الْفَاتِحَةِ, whatever he revealed in Surah Mubarakah Fatiha, that has been concentrated in one sentence, Bismillahir Rahmanir Rahim. And the hadith continues, وَكُلَّمَا فِي الْبَسْمَلَ فِي الْبَا, that whatever is in Basmala, the Bismillahir Rahmanir Rahim, that is limited and that is condensed again in Ba, the first alphabet of Bismillahir Rahmanir Rahim, the Ba, B, Ba. And we all know that under this Ba is a dot which gives recognition and identity to this alphabet Ba. What Maula says further, he says, وَكُلَّمَا فِي الْبَا فِي النُّقْتَ, that whatever is in Ba, it is in the dot that is under that Ba, the alphabet. And in end, Maulai Kainat says, وَأَنَا النُّقْتَةُ تَحْتَ الْبَا, and I am that nukta or dot that you can see very easily under that Ba. Now, this hadith has been explained in many forms. I am not going into the details. Here I have discussed this hadith just in order to share the importance of this surah and basmala and Ba, and of course the importance of that nukta and dot that we can see under that Ba. But at least we can draw a conclusion that Ba cannot be recited without that nukta, basmala cannot be recited without Ba, and without basmala we cannot recite Fatiha, and without Fatiha even Quran cannot start. What does this mean? That if somebody is willing to bypass Amirul Mu'mineen, the personality of Hazrat Ali, if somebody has got hatred in his heart for the personality of Amirul Mu'mineen, he cannot even initiate the recitation of this holy book. Salawat ala Muhammad wa ala Muhammad. Now there is a hadith by the Holy Prophet. He says, by the one in whose hand is my soul, Allah has not sent down a similar surah to this surah, Surah Fatiha. It's unique. Allah has not sent down a similar surah to this surah, Surah Fatiha, neither in Torah, nor in Gospel, Bible, Injil, nor in Psalm, Zabur, nor even in Quran. Even in Quran, this is a unique surah. And it is Ummul Kitab. The meaning of Ummul Kitab, mother of the book, the center of the book, the central idea of the whole book is given and presented in this Surah Fatiha, the seven verses, Surah Mubarakah Fatiha, this opening chapter. Again, another hadith in which Maulai Kainat says, and actually Maulai Kainat is quoting the Prophet. And in this hadith, he is referring to a verse of the Holy Book of Surah Mubarakah Hijr, the 15th chapter of Quran, and the verse number 87. In which Almighty Allah says, "Atainaka sab'an min al-masani wal-Qur'an al-azim." For surely we have given you the seven of repeated verses and the whole Quran, the grand book. So you can see the importance of these seven verses of repeated, because according to one hadith, these seven verses were revealed twice. Mentioned in Quran once, but they were revealed twice. Although it's a Makki surah, but it was repeated twice. Maybe in Medina once again, or in Makkah second time, but it was oft repeated. So, Maulaya Kainat, quoting the Prophet, referring to this verse, what he says, "Verily Allah, the Exalted, has bestowed His favors on me, particularly for the opening, the Surah Mubarakah Fatiha, and has positioned it on a par with the whole Grand Quran." It stands on a par with the Grand Quran, with the whole Grand Quran, and surely Fatihatul Kitab is the dearest, now please mark these words, is the dearest item in the treasures of the Arsh, the throne of heaven. So this is quite enough to understand the importance of the Surah Mubarakah Fatiha, this book, this Surah and Basmala and other verses of this Surah Mubarakah Fatiha. Now coming to that point, which I stated earlier that I would discuss a little later. When this Surah Mubarakah Fatiha was revealed, it's a very important question. Although there is a difference of opinion about the exact time when it was revealed, but there is a consensus among the scholars that it was revealed during the early days of the prophethood, when he proclaimed prophethood. Within a very short time, this Surah Mubarakah Fatiha was revealed. And for that, the scholars have presented this hadith. Which hadith? We know, before quoting this hadith, I would like to draw your attention towards this fact, that namaz is one of the important ibadah. Rather, very important, and this ibadah was there at the beginning of Islam. And right after the prophethood proclaimed, this ibadah was there. In whatever shape, although it was not in this way, for example, right now we know that Maghrib has 3 rakat and Isha has 4 rakat. Earlier, it was not a 4 rakat concept in namaz. And keeping aside the concept of wajib and mustaha, whether it was obligatory or recommended, but the prayer was there, namaz was there. It is an agreed upon fact. And there is a hadith, La salata illa bi fatihatil kitab, that namaz cannot be offered until and unless Surah Mubarakah Fatiha is recited in that namaz. So namaz, whether it is wajib or it is mustahab, namaz cannot exist, namaz cannot be complete without the recitation of Surah Mubarakah Fatiha. One. Number two, namaz was there at the early days. Number three, the conclusion, Surah Fatiha was there in the early days, because without Surah Fatiha, namaz could not be complete. So it is an agreed upon fact that Surah Fatiha was revealed in early days, but how early? According to one unique opinion, it is not shared by many other scholars, but it is unique and appealing again. And it is mentioned in the Tafsir book of Allama Sayyid Ali Naqi Naqan Sahib Alallahu Maqamahu, his book Fasul Khitab, and the Muqaddamah book, the introduction of Quran, in the introduction of Surah Mubarakah Fatiha, the first volume. You will see that Allama Sayyid Ali Naqi has mentioned his opinion regarding the revelation of Surah Mubarakah Fatiha, and he has linked the revelation of Surah Mubarakah Fatiha with the starting 5 verses of Surah Mubarakah Alaq. To understand this phenomena, we need to first understand the tone of Surah Mubarakah Fatiha. Look what is mentioned in this surah. In this Surah Mubarakah Fatiha, after Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in. Now stop here. What is the meaning of this sentence? Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in. These are words of God. These are words of Almighty Allah. Allah is saying this. Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in. We worship only you and we seek assistance only from you. God is saying this. He is addressing somebody. He is asking assistance from someone. He is saying that I am worshipping you and only you. Is it possible? No, it's not possible. So what is the concept behind? Actually, Almighty Allah is teaching the mankind, all human beings, that once you are speaking before Almighty Allah, once you are addressing Allah, once you are supplicating, how are you going to address? He is teaching. This is style of teaching. We see, even in classrooms, that many a times a teacher says something and then students repeat that message. This does not mean that teacher is saying and addressing directly to that class or students. Actually, he is teaching how to address and how to say these lines. Similarly, in this surah, Almighty Allah has taught the mankind, the human beings, the common person, how to address their Lord, how to address their Creator, how to address Almighty Allah. The way of addressing Almighty Allah is taught in this particular surah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Now what Almighty Allah is saying? That when you address Almighty Allah, say this. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Guide us. Almighty Allah is not addressing somebody else. Otherwise, he would be real God. He is teaching that say like this. Ihdinas siratal mustaqim. Guide us and give us steadfastness on the right path. سِرَاتَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. The surah continues. But do we find this instruction before Surah Mubarak Fatiha? That God says, say like this, it is not there. Before Surah Mubarak Fatiha, we don't see any such instruction written there that قُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Paul, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Paul, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. It is not there. Generally, scholars maintain that we would assume that the instruction is there. And it is very common in literature. We would assume the tone of the surah tells us that we have to assume this instruction before the surah starts. That say like this. Although, in many surahs, such instruction physically exists. For example, in the case of Surah Mubarakah Ikhlas, Surah Mubarakah Falaq, Qul A'udhu Bi Rabbil Falaq, Qul, say, A'udhu Bi Rabbil Falaq, Qul A'udhu Bi Rabbil Nas, say, it starts with Qul, Qul Huwa Allahu Ahad, say, He, the Allah, is one and only. Here we see, in written form, physically the instruction is there. One. In Surah Fatiha, instruction is not there, but it would be assumed, according to the scholars who do not link these seven verses with the five verses of Surah Mubarakah Alaq. Now, according to Allama Sayyid Ali Naqvi Sahib, what he says that just analyze the five verses of the Surah Mubarakah Alaq and you would automatically find the link between these five verses and the seven verses of Surah Fatiha. What Allah is saying in those five verses, Iqra, read, recite, read. بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. In the name of your Lord who created. الَّذِي خَلَقَ مِنْ عَلَقَ. خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقَ. He created human being from clot. اِقْرَأَ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. Again read. And your Lord is Akram. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. He who taught with the pen. عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ. And taught the human being what they did not know. Almighty Allah mentioned twice, Iqra. Now these are the five verses, this is the first revelation. Now question arises, Almighty Allah instructed twice, Iqra, Iqra, read, read, but He has not mentioned in these five verses what to be read and what to be recited. I hope my words are being caught and properly understood by my youngsters. Almighty Allah is instructing Iqra, Iqra, twice in the first five verses of Surah Mubarakah Alaq. The first revelation revealed on the Holy Prophet, but in these five verses, he is instructing to read, but he has not mentioned what to be read and what to be recited. Allama Sayyid Ali Naqvi Sahib, of course, he is referring again to some other scholar, but he agrees to this theory and he says that Surah Mubarakah Fatiha is connected with this first revelation, that when Almighty Allah said Iqra twice in the first revelation, He needs to mention what to be read. And that is the first message of the Surah Mubarak-e-Fatiha. The second message, the Surah Mubarak-e-Fatiha. When He says Iqra, He means that Surah Fatiha is to be read. Instructions are given, read. And then Jibreel, of course, conveys the message that this is to be read. And what is to be read? Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, and the surah continues. So now this is the link given by Allama Sayyid Ali Naqvi Sahib and few other scholars as well in their books. It is not necessary to agree to this point. You may agree, you may disagree, you can do further research on this point. I am just here to share something which is mentioned in few books and which appeal to me more. With this we conclude the first session today. Inshallah, from tomorrow onwards we will start our discussion on the first verse of Surah Mubarak-e-Fatiha, Bismillahir Rahmanir Rahim. With this we conclude and move towards the second normal session of Urdu Majlis. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Brothers, Aziz wa Khawaran Muhtaram, kal hamari guftugu jahan tak pahunchi thi, wahan se hum ise aage badhaye. Kal hamari baat hui is baat, ye ek sawal maine aapke samne pesh kiya tha ke istemalul lafz fi aksara min maana wahid. کہ کیا اس بات کا امکان ہے کہ ایک لفظ کو ایک سے زیادہ معنی کے لیے ایک ہی وقت میں استعمال کیا جائے. اور اس کے ذیل میں پھر ہماری گفتگو آگے بڑھی اور میں نے گزارش کی تھی کہ جہاں تک قرآن کا معاملہ ہے, قرآن کے معاملے میں یہ بالکل ایک متفقہ معاملہ ہے, مسئلہ ہے, جو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ظاہرہ انیق و باطنہ عمیق, کہ اس کا ظاہر خوشنما, خوشگوار, خوبصورت ہے اور اس کا باطن جو ہے وہ اور بھی گہرا ہے. اس کے باطن کے اندر اور بہت سی لیئرز ہیں, اور جو وارثان قرآن ہیں وہ وارثان قرآن ان بطون قرآن سے خوب واقف ہیں اور وہ اس کی تشریح کر سکتے ہیں. جس کے لیے کل میں نے آپ کی خدمت میں دو مثالیں پیش کی تھیں. ایک سورہ مبارکہ ہود کی آیت, بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین, جس میں جناب شعیب علیہ السلام کی قوم کو سمجھایا گیا کہ یہ ناجائز منافع حاصل کر کے تم جو یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے زیادہ کما لیا, یہ تمہاری مس انڈرسٹینڈنگ ہے, تمہاری غلط فہمی ہے. وہ دو نمبری کر کے تم نے حرام کما تو لیا, جو تعداد میں ایز اے فیگر تم کو زیادہ لگ رہا ہے, لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین, جسے اللہ نے تمہارے لیے باقی رکھا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر مومن ہو تو. اس بات کو سمجھو. یہ میں نے گزارش کی تھی کہ اس کا ظاہر کہ جو تمہارا جائز منافع جسے اللہ نے باقی رکھا ہے, اور اس کا باطن جو معصوم نے سمجھایا کہ بقیت اللہ سے مراد کیا ہے, جسے اللہ نے باقی رکھا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ تمہارے زمانے کا امام ہے کہ جسے اللہ نے باقی رکھا ہے. اب یہ باطن قرآن ہے, یہ قرآن کے اندر ان لیئرز کے اندر کورڈ ایک مطلب ہے کہ جسے وارث قرآن کے سوا کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا. اگر کوئی دوسرا بتائے تو وہ تفسیر بر رہا ہے, اس لیے کہ وہ ہے ٹھوکم ٹھاک, وہ ہے تکے بازی, لیکن اگر معصوم نے بتایا تو اس کا اعتبار ہے. اسی طرح سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ مرج البحرین یلتقیان سورہ مبارک رحمان کی آیت, جہاں دو دریاؤں کا تذکرہ پروردگار عالم نے کیا, اور وہ دو دریا جن میں حد فاصل ہے وہ آپ ڈھونڈیے, اور اس حوالے سے تفسیر کے اندر بہت سی باتیں کی گئی ہیں. مگر جو اس کا باطن ہے اس کی طرف معصوم نے متوجہ کیا کہ یہ دو دریا علی و زہرا ہیں, کہ جن کے ملاپ کو دو دریا کے ملاپ سے تعبیر کیا جا رہا ہے, اور درمیان میں جو حد فاصل ہے وہ خود پیغمبر اکرم کی ذات ہے, اور یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, وہ جو موتیوں کا تذکرہ ہے کہ جو ان سے نکل رہے ہیں اس ملاپ کے نتیجے میں, اس سے مراد حسن اور حسین کی ذات ہے, کہ کسی موتی کی چمک اتنی نہیں ہو سکتی کہ جتنا حسن اور حسین کے وجود کی چمک ہے. جو ان کی روشنی ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ کہیں اور سے حاصل ہو سکے. اور روشنی پر مجھے یاد ہے, اگرچہ مجھے بات کچھ اور کہنی تھی مگر رکیے یہاں پر. اب یہ دیکھیں تفسیر کے مباحث کے اندر, اچھا یہ بات جو میں نے کہی مرج البحرین یلتقیان, ये हमारी तफसीर में तो है, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की तफसीर के अंदर भी आपको ये बात मिलेगी बाज असहाब के जरिए से, उन्होंने भी इस बात को नकल किया है। खैर, वापस आइए, जो मैं गुजारिश कर रहा था रोशनी के ऊपर, सूरह मुबारक दहर कुरान मजीद का बहुत अहम सूरह, इसलिए भी कि इसमें आले मोहम्मद की उस फजीलत का तस्किरा है कि युत एमून तआम अला हुब्बे ही मिस्कीन व यतीम व असीरा, कि यह आले मोहम्मद वो है कि जो अपनी भूख के ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं, वो अपनी भूख को खत्म करने की फिक्र में उतने नहीं होते कि जितने दूसरे भूखों के पेट को भरने के लिए फिक्रमंद होते हैं। युत एमून तआम अला हुब्बे ही, ये अल्लाह की मोहब्बत में भूख के बावजूद खिला देते हैं किसको, मिस्कीन को, यतीम को, असीर को, अपने हिस्से की रोटियां उनके सामने रख देते हैं और परवरदिगार आलम की रजा और खुदा के शुक्रिया को कबूल कर लेते हैं, जो खुद खुदा ने फरमाया इनके दिल के उस इरादे को अल्फाज बनाकर, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, कि हम तुम्हें खिलाते हैं किस लिए, हम अल्लाह की खातिर खिलाते हैं। मैं एक मरतबा फिर अल्लामा सैयद अली नकी साहब ही का हवाला दूं, वो बहुत अच्छी बात फरमाते हैं कि ये इन तीनों को एक साथ इन्होंने मुखातब कब किया, कि ये तीनों एक साथ आए थे, युत एमून ताम अला हुब्बे ही मिस्कीनों व यतीमों व असीरा। आप जानते हैं वाकया आपके जहनों में मौजूद है कि एक दिन मिस्कीन आया, दूसरे दिन यतीम आया, तीसरे दिन असीर आया, तो ये तीनों एक साथ तो नहीं आए थे, ये तीनों आए थे अलग अलग दिन। और खुदा क्या फरमा रहा है कि ये कहते इन नमा नुत एमो कुम, कुम यानी थर्ड पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन प्लूरल, कि जिसको मुखातब किया जा रहा है, तुम सबको जो हमने खिलाया, इन नमा नुत एमो कुम लिवजहिल्लाह, तो ये तीनों तो एक साथ आए ही नहीं है। जब एक साथ आए नहीं है तो इन तीनों को एक साथ मुखातब कब किया, एड्रेस कब किया। यहां पर वो फरमाते हैं कि इन तीनों को एक साथ मुखातब नहीं किया, ये उनके दिल का जज्बा था जो परवरदिगार को इतना पसंद आया कि अल्फाज की सूरत में कुरान की आयत बनाकर नाजिल कर दिया, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम, हम तुमसे नहीं चाहते जजाअन, हम ना तुमसे कोई जजा चाहते हैं, वला शुकूरा, और ना ही तुम्हारा शुक्रिया चाहते हैं, हमने तो अल्लाह के लिए खिलाया। और ये याद रखिएगा, आप में से बहुत से साहिबान सरवत हैं और इंशाल्लाह उनका जज्बा कुर्बतन इलल्लाह ही का होता होगा, लेकिन याद रखिए कि इस्लाम का पैगाम भी यही है कि जो काम खुदा के लिए हुआ तो फिर उसके अजर की तवक्को भी खुदा ही से रखो, उसके अजर की तवक्को भी फिर खुदा ही से रखो। देखिए, अगर दुनियादारी का मामला है तो ठीक है कि हमारा ऐलान हुआ या नहीं हुआ, हमारे नाम का कसीदा पढ़ा गया या नहीं पढ़ा गया, लेकिन अगर वो काम आले मोहम्मद की इत्तेबा में हो तो हो नहीं सकता कि खुदा के सिवा किसी और के लिए उस काम को किया जाए, फिर तो मर्जी परवरदिगार ही पेशे नजर होना चाहिए कि अल्लाह के प्लेजर के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए हमने इस काम को अंजाम दिया। मैं कहना यह चाहता हूं, सूरह मुबारक बकरा कुरान मजीद का दूसरा सूरह, थोड़ा सा हम डिस्ट्रैक्ट हो गए, वापस वहीं पर जाना है हमने, रुकिए, सूरह मुबारक बकरा कुरान मजीद का दूसरा सूरह, परवरदिगार आलम वहां पर मुजम्मत करता है उन लोगों की कि जो अल्लाह की राह में सदका देकर उसको इनवैलिड बना देते हैं। देखिए, एक तो वो है कि जो अल्लाह के लिए दे ही नहीं रहा है, एक वो है कि जो अल्लाह के लिए दे रहा है मगर देने के बाद अनफॉर्चुनेटली उसको इनवैलिड कर देता है, उसको बातिल कर देता है। ला तुबतिलू सदकातकुम, खुदा फरमाता है खबरदार अपने सदके को बातिल मत करो, इनवैलिड मत कर दो, कैसे, बिल मन्ने वल अज़ा, एहसान जताकर और अजियत पहुंचाकर अपने सदके को बातिल मत करो। तुमने दिया किसके लिए, अल्लाह के लिए दिया, तो अब एहसान किस बात का, अगर मैं ना होता तो तुम पढ़ नहीं सकते थे, अगर मैं ना होता तो तुम भूखे मर जाते, अगर मैं ना होता तो तुम कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो जाते, ये जुमले क्या है, अगर मैं ना होता, मैं ना होता, मैं ना होता, खुदा का शुक्र अदा करो कि परवरदिगार ने तुम्हें यह तौफीक दी कि तुम उसके किसी बंदे की मदद कर सको। ला तुबतिलू सदकातकुम बिल मन्न वल अज़ा, खबरदार अपने सदके को जो तुमने अल्लाह के लिए दिया तो उसको मालूम है, उसे लिख भी लिया, उसका रिवॉर्ड भी मिल जाएगा, अजर भी है, सब कुछ है, लेकिन ला तुबतिलु सदकातकुम, खबरदार अपने सदके को एहसान जताकर या अजियत पहुंचाकर बातिल मत करो। अजियत पहुंचाना, एहसान जताना बातिल मत करो। और फिर खुदा फरमाता है कि कौलु मारूफ व मगफिरतुन खैरु मिन सदकतिन यदबउहा अज़न। देखो अच्छी तरीके से बात करके, कौलु मारूफ अच्छी तरीके से बात करके मत दो सदका, अच्छी तरह से बात करो। व मगफिरा, और अगर वो कोई कड़वी बात करे तो तुम उसको इग्नोर कर दो, माफ कर दो। मगफिरतुन खैरुन, ये बेहतर है, मिन सदकतिन उस सदके से, यदबउहा अज़न के जिसके बाद तुम किसी को अजियत पहुंचाओ। बेहतर ये अच्छी तरह से बात करो। क्या मैं अच्छी तरह से क्या बात करूं, एक तो मांगने के लिए आया है फिर गालियां दे रहा है, फिर गालियां दे रहा है। हाँ ठीक है, मगर तुम्हें मालूम है उसका क्या बैकग्राउंड है, तुम्हें मालूम है कि वो कितनी परेशानियों में से आया है, नहीं मालूम है ना, और वो कुछ बुरा भला कह रहा है, कब माफ कर दो, अच्छी तरह से बात करो, माफ कर दो, ये बेहतर है उस सदके से कि जिसके बाद देने वाला अजियत पहुंचाए। और याद रखिएगा सूरह मुबारक है नूर का ये मैसेज, फलियाफू वलियस्वहू, माफ कर दो, नजरअंदाज कर दो। अल्लाह तो हिब्बूना अय्यफिर अल्लाह लकुम, क्या तुम पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे? जरा अंदाज देखिए कुरान मजीद का, इंसान की नफ्सियात और उसकी साइकोलॉजी से कितना करीब होकर यह गुफ्तगू की है। अल्लाह तो हिब्बूना, क्या तुम्हें पसंद नहीं है? अय्यफिर अल्लाह लकुम, गलतियां तो तुमसे भी हो जाती है, नामुनासिब तो तुम भी कह जाते हो, तो यही चाहते हो ना कि खुदा माफ कर दे। तो जिस खुदा से तुम माफी के तलबगार हो उसके बंदों को माफ करने का जज्बा भी तो अपने अंदर पैदा करो। अल्लाह तो है बुना यकफिर अल्लाह लकुम, असल मकसद क्या होना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा, याद रखिएगा, मैं कभी ये नहीं कह रहा कि जिसके ऊपर एहसान किया गया है वो एहसान फरामोश बन जाए, नहीं। इस्लाम बैलेंस की बात करता है, इस्लाम कहता है कि जिस पर एहसान हुआ है वो उस एहसान को याद रखे, जिसने एहसान किया है वो उस एहसान को भूल जाए। जिस पर एहसान हुआ है वो एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। इसीलिए हदीस के अंदर है कि मन लम यशकुरिल मखलूक लम यशकुरिल खालिक, जो मखलूक का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता वो खालिक का शुक्रिया क्या खाक अदा करेगा? जो मखलूक का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता वो खालिक का शुक्रिया क्या अदा करेगा? ये एहसान फरामोशी का दर्स नहीं है। जिस पर एहसान हुआ वो अपने मोहसिन को याद रखे, वो उसका शुक्रिया अदा करे, मगर जिसने एहसान किया है वो मोहसिन इस बात की तवक्को क्यों करता है कि ये मेरा शुक्रिया अदा करे? उसका जवाब यही होना चाहिए कि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाउन वला शुकूरा, ना हम तुमसे जजा चाहते हैं ना शुक्रिया चाहते हैं, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजिल्लाह, हमने तुम्हें अल्लाह की मोहब्बत में खिलाया, अल्लाह की खातिर खिलाया, हमारा शुक्रिया हमारी जजा उसके जिम्मे है। और उसके बाद फिर परवरदिगार आलम भी वाकअन फिर शुक्रिया अदा करता है, और वो शुक्रिया अदा करना कदरदानी के माना में होता है। दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये बात कहीं और चली गई, वापस आइए उस बात की। सूरह दहर का तस्करा हमने क्यों छेड़ा? मैंने कहा गुजारिश ये कि रोशनी से मुझे याद आया, मोती की रोशनी, हसन और हुसैन की रोशनी। अब जरा देखिए ये सूरह मुबारक दहर के अंदर एक आयत है कि जिसमें परवरदिगार आलम अहले जन्नत के लिए नेमतों का तस्करा करते हुए ये इरशाद फरमाता है, ला यरौन फीहा शमसं वला ज़म्हरीरा, कि ये लोग जन्नत में नहीं देखेंगे, ये नहीं देखेंगे, क्या नहीं देखेंगे? शमसं वला ज़म्हरीरा, ना सूरज जैसी रोशनी देखेंगे, वो स्कॉर्चिंग बीम्स का वो भी नहीं देखेंगे, वला ज़म्हरीरा, और ना ही सख्त जाड़ा सख्त सर्दी वो भी नहीं देखेंगे। देखिए आप तो माशाल्लाह कभी कभी इस किस्म के प्रॉब्लम्स का शिकार होते होंगे, अब मुझे तो मालूम नहीं है, मैं तो अंदाजा ही लगा रहा हूं, लेकिन बड़ा बेहतर मौसम है, बेहतर मौसम है वाकयान कराची जैसा मुझे तो लगता है कि जिसके अंदर आदमी अपने नॉर्मल ड्रेस के अंदर बाहर जा सकता है, कोई मसला नहीं है। वरना ये कनाडा वगैरह के अंदर हमारे एक दोस्त बहुत अच्छा तबसरा करते हैं, वो कहते हैं कि आधा घंटे तक कपड़े पहनते रहो और आधे घंटा कपड़े उतारने में लगते हैं, कि ये भी पहनो और फिर ये भी पहनो और फिर जैकेट भी पहनो और फिर ये टोपी भी पहनो और फिर ये भी और मफलर भी डालो, अच्छा और भी ये भी देख लो, आदमी क्या करे? वो मौसम जो है कंट्रोल में है ही नहीं, वो आउट ऑफ कंट्रोल है। इतनी सख्त सर्दी वो भी नाकाबिले बर्दाश्त, और गर्मी बाज इलाकों में आप जाए तो नाकाबिले बर्दाश्त गर्मी, इंसान बर्दाश्त नहीं कर सके इतनी गर्मी। अच्छा जन्नत के बारे में क्या कहा गया? इत्तेफाक से दारुसलाम खुद जन्नत का भी एक नाम है, अलबत्ता इससे भी ज्यादा प्लेजेंट वेदर होगा, आप बेफिक्र रहिए। ये इस किस्म का भी मसला नहीं होगा कि ट्रैफिक जाम हो गया या आने में प्रॉब्लम हो गई या बारिश बहुत तेज हो गई, नहीं ऐसा भी मसला इंशाल्लाह जन्नत में नहीं होगा। वो आप जब जाएंगे, खुदा हम सबको नसीब करे, तो उसके बाद इंशाल्लाह देख ही लेंगे। कल्ला यरौना फीहा शमसन वला ज़महरीरा, कि वहां पर ये लोग न सूरज की जो तेज एक रोशनी होती है कि जिसमें धूप में एकदम बर्दाश्त ना कर सके कब वो भी नहीं देखेंगे, वला ज़महरीरा, और न ही सख्त सर्दी कब वो भी नहीं देखेंगे। अच्छा ये रिवायत जो अब मैं पढ़ने जा रहा हूं बयारुल अनवार में भी है, दीगर किताबों में भी है, अगेन अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने भी अपनी तफसीर के अंदर इसको कोट किया। अब उसके बाद एक हदीस, हदीस के अंदर क्या है कि अहले जन्नत जन्नत में अचानक महसूस करेंगे कि रोशनी एकदम बढ़ गई। का नूर तो वैसे ही जन्नत के अंदर बड़ा आइडियल नूर, आइडियल रोशनी होगी, का उसमें अचानक ऐसा महसूस हुआ कि जैसे रोशनी एकदम बढ़ गई, जैसे सूरज तुलू करता है तो जो रोशनी होती है क्या वो झुलसा देने वाली, एकदम धूप क्रिएट करने वाली का ऐसी रोशनी नहीं, लेकिन बहरहाल रोशनी में इजाफा हो गया, ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे सूरज तुलू हो गया। तो अब उस मौके पर जो अहले जन्नत है उनमें से कुछ सवाल करेंगे परवरदिगार से, कह मालिक तूने नहीं कहा था, तेरी किताब में तो था कि ला यरौना फीहा शमसं वला ज़महरीरा, कि ये लोग सूरज नहीं देखेंगे, जन्नत में सूरज जैसी रोशनी नहीं होगी, यानी मैं अपने अल्फाज में कहूं कि झुलसा देने वाली रोशनी तो नहीं है, मगर ऐसा लग रहा है कि जैसे सूरज तुलू हो गया ऐसी रोशनी। तो उसमें खुदा की तरफ से जवाब ये मिलेगा कि ए अहले जन्नत, ये सूरज तुलू नहीं हुआ है, ये किसी बात पर अली और फातिमा मुस्कुराए हैं, ये किसी बात पर अली और जहरा मुस्कुराए हैं, ये नूरे दंदाने अली और जहरा है कि जिससे तुम्हें ऐसा लग रहा है कि गोया सूरज तुलू हो गया। दुरूद भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तब ये एक फिर दरमियान में बात आ गई, मगर आज मुझे वो बहरहाल मुकम्मल तो कर देना है, चाहे मुखी साहब थोड़े नाराज भी हो जाए। अब आप एक और मिसाल देखिए, वो जो बातें कुरान की मैं बात कर रहा था, सूरह मुबारक का कदर, सूरह मुबारक का कदर, इन्ना अंजलनाहु फी लैलतुल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, यकीनन हमने इसे नाजिल किया शब कदर में, और तुम्हें क्या मालूम कि शब कदर क्या है, यानी एक इंसान वैसे देखे तो क्या है शब कदर, चंद घंटों की रात ही तो है, मगर तुम्हें क्या मालूम कि शब कदर क्या है। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये एक रात हजार महीने मिलकर इस एक रात का मुकाबला नहीं कर सकते। गौर फरमाया आपने, वो शबे कदर वो तो रोशन है वाजे है, उसका जाहिर क्या है, वही शबे 23 या शबे 21 या शबे 19, बरादरान अहले सुन्नत के नजदीक शबे 27, माहे रमजान ही की एक रात है ना, ये है जाहिर कुरान। मगर बातें कुरान, एक मरतबा फिर बिहारुल अनवार में छठे इमाम की रिवायत कि लैलतुल कदर क्या है, का लैलतुल कदर खुद फातिमा जहरा है, बीबी के नाम पर एक बाबा से बुलंद दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल कद्र क्या है, तुम्हें क्या मालूम कि फातिमा जहरा क्या है। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, वो हजार महीने मिलकर इस मुख्तसर चंद घंटों की रात का मुकाबला नहीं कर सकते। जहरा की उम्र कितनी है, 18 साल, बहुत मुख्तसर, मगर हजारों सालों की मनहूस जिंदगियां मिलकर इस बाबरकत जिंदगी का मुकाबला नहीं कर सकती, मुमकिन नहीं है, है ये भी मुख्तसर, तुम्हें क्या मालूम कि फातिमा जहरा क्या है, कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये है बातें कुरान। अब आइए जरा जल्दी से हम सूरह फजर के ऊपर आ जाएं। वल फजर व लयालिन अशर, वो 10 रातों की बात तो हो चुकी कि माहे जिलहज्जा की पहली 10 रातें, माहे मुहर्रम की इब्तदाई 10 रातें, माह रमजान की आखिरी 10 रातें, तीनों अकवाल आए, तीनों के दरमियान जम करना मुमकिन है, जम करना यानी जमा करना, कि ये भी मुराद हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, तीनों हो सकती है, ये तीनों का इम्कान मौजूद है। ठीक है, अब आइए फजर का क्या मतलब है। फजर का मतलब है शिगाफ डाल देना। शिगाफ का क्या मतलब है, जैसे ये चादर है, ये अबा की चादर है, अगर इसके अंदर, अगर मैं गलती नहीं कर रहा, गुजराती में शायद फांको पड़ी गई, ये कहते हैं, ये कहते हैं सर, यह गलत है, जो भी है बहरा, वो शिगाफ पड़ गया, यानी शिगाफ डाल दिया। ये गुजराती मेरी जबान है, मुझे नहीं मालूम है, मैं आपको एक लतीफा सुनाई देता हूं। आमतौर पर उर्दू में तकरीर करने का मौका मिलता है, जब उर्दू में मजलिस पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं शीन का आपकी गलती तो होगी, क्यों, इसलिए कि मेरी जबान तो नहीं है, इसलिए उर्दू के मुझे 100 खून माफ है। अच्छा, अंग्रेजी के अंदर कब बोल लेते हैं, मगर जाहिर मेरी जबान तो नहीं है, तो अंग्रेजी के अंदर भी गलतियां हो जाती हैं। तो किसी ने पूछा कि भाई अरबी, अब गुजारा उसके अंदर भी है, चल जाता है मामला, अरबिस्तान में भी जाते हैं तो काम चल जाता है, का गलती, का गलती तो करेंगे, मेरी जबान थोड़ी है, का फारसी, का उसमें भी गुजारा है, काम चल जाता है, का गलती, का गलती तो होगी ना, मेरी जबान थोड़ी है, का फिर आपकी जबान कौन सी है, का गुजराती, का उसमें वो गलती नहीं करते, का वो आती नहीं है, वो आती नहीं है, वो भी गुजारा ही है, उसके अंदर चल जाता है मामला, जो अहले गुजराती है वो बर्दाश्त कर लेते हैं, अब हम खुद अपनी जबान है लेकिन वो बुनियादी तौर पर नहीं आती है। तो अब शिगाफ पड़ गया, शिगाफ यानी अगर आप चादर को दरमियान में से फाड़ दें, ये है फजर। फजर को फजर क्यों कहते हैं, का इसलिए फजर को फजर कहते हैं कि रात की स्याह चादर में शिगाफ डालकर नूर बरामद हो जाता है, का इस वजह से इसे कहते हैं फजर, कि रात की स्याह चादर है उसके अंदर शिगाफ आ गया, वह उसको फाड़ कर उसमें से नूर बरामद हो रहा है। तो एक तो ये फजर, दूसरे क्या कि अगर एक इंसान अपने अंदर रोशनी महसूस करता है, कभी कभी कोई जुमला होता है जो इंसान के दिल में असर कर जाता है, का उसको भी फजर से ताबीर किया गया, उसको भी फजर से, ये भी फजर है कि एक इंसान, देखिए आप दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत है परवाज मगर रखती है, ये जो दिल में बात चली गई, क्या मतलब, बात तो वही बात थी, कहने इससे दिल में असर हो गया, उसके दिल में ये बात बैठ गई, ये जो दिल में बात बैठ गई इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो कोई अच्छी बात थी जो दिल में बैठ गई तो इसका मतलब ये था कि उसके दिल में रोशनी हो गई, ये हैज बीन एनलाइटेंड, ये जो रोशनी उसके अंदर हो गई, कहा इसको भी फजर से ताबीर किया जाएगा। मुरादे परवरदिगार अगर ये हो तो बईद नहीं है। और उसके बाद अगला मरहला, उसके बाद अगला मरहला कि अगर किसी माशरे के अंदर जहां जहालत ही जहालत हो और वहां पर कोई इनकलाब ले आए और रोशनी पैदा कर दे, तो उसे भी फजर से ताबीर किया जाएगा, चाहे वो अरब की जाहिलियत में इनकलाब मोहम्मद हो या बनू उमैया के चादर स्याह में आशूरा का रोशनी वाला इनकलाब हो, का ये सब फजर के मिसदाक है, ये सब फजर है, इसलिए कि उसके जरिए से रोशनी दी जा रही है, रोशनी बांटी जा रही है, रोशनी पैदा की जा रही है, अंधेरों को हटाया जा रहा है और रोशनियों को बिखेरा जा रहा है, का ये सब के सब फजर के मिसदाक बनेंगे। वल फजर है, वल अयालिन अश्र, वो दस रात है, वह शफ है, वल वत, का ये दो क्या और ये एक क्या, अब दो और एक क्या, ये वैसे इवन एंड ऑड, ठीक है लफ्ज से तो इतना समझ में आ गया, अब अगर कोई किताब को काफी समझता है तो बताए कि इसका क्या मतलब है, अगर वाकयन फकत किताब काफी हो, वारिस किताब की जरूरत ना हो, अगर कोई हसबुना किताब अल्लाह का दावेदार है, अगर उसके ख्याल में किसी मुअल्लिम कुरान की जरूरत नहीं है, तो फिर वो बताए कि दो की कसम एक की कसम, ये दो कौन है और एक कौन है, कह दे कि हर इवन हर ऑड की कसम, या कोई दो है कोई एक है, रिवायतों के अंदर आया, नमाज शब के अंदर जो नमाज शफा है और नमाज वितर है, का वो मुराद है, वो भी मुराद है। अब उसके बाद आइए बातिन कुरान की तरफ, बातिन कुरान की तरफ, का फजर से मुराद है मेहदी, मेहदी और मेहदी का इनकलाब, दुरूद भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, वह लयालिन आशर, और वो दस रातें कि जिनकी कसम खाई गई, उससे मुराद है वो दस इमाम जो इमाम जमाना से पहले हैं, का वह शव है और दो दो की कसम, ये दो कौन है? का अली और जहरा वो दो है कि जिनकी कसम यहां पर खाई जा रही है। और वल वत्र, वत्र के बारे में किताब में नहीं लिखा, इसलिए मैं एहतमाल के तौर पर कह रहा हूं कि क्या बईद है कि इससे खुद पैगंबर अकरम की जात मुराद हो। ये है बातें कुरान, जिसके लिए दो तकरीरें हमने मुकदमे के तौर पर की और अब इस नतीजे तक पहुंचाना मकसूद था। ये बातें कुरान है, बातें कुरान की बहस है कि चाहे उस इनकलाब के हवाले से जो आखिरी इमाम के जरिए से बरपा होगा और फिर बिल्कुल स्याही खत्म हो जाएगी और रोशनी ही रोशनी होगी और खुद वजूद इमाम जमाना, उन दोनों को फजर से ताबीर किया गया। मगर आइए बाबे मसाइब में करबला के इनकलाब और करबला की फजर पर गुफ्तगू करें कि जहां हुसैन मजलूम का काफिला पहुंचने वाला है। ये दो मुहर्रम की रात है और दो मुहर्रम का दिन जब खत्म होने वाला था तो हुसैन इब्न अली का काफिला करबला पहुंचा और आप जानते हैं कि किस तरह से पहुंचा। इंतखाब तो इस जमीन का हुसैन के लिए दहवुल अर्ज के मौके पर किया जा चुका था। जब जमीन को बिछाया गया, मैं अर्ज कर चुका कि उसी वक्त हुसैन के लिए करबला की जमीन को खुदा ने मुंतखब किया था। हुसैन तो जानते हैं कि यह वादागाह है, यह मेरा मक्तल है, मगर अपने साथियों के लिए भी वाजे करना है, दूसरों के लिए भी वाजे करना है। इंतजाम कुदरत यह हुआ कि रहवार, इमाम की सवारी का जानवर, वो घोड़ा वो जुलजना जिस पर इमाम सवार थे, जब करबला पहुंचा है तो यहां पर ठहर गया, रुक गया, आगे बढ़ने से इस सवारी के जानवर ने इनकार कर दिया, इनकार कर दिया। बाज मकातल के अंदर है कि सात सवारी के जानवर बदले गए, सात घोड़े बदले गए, मगर कोई जानवर आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। मंजिल आ चुकी, मक्तल आ चुका और अब इमाम हुसैन ने कहा कि यहां कोई करीब में कबीला आबाद है तो उसे बुला कर लाओ, उसके लोगों को बुला कर लाओ। बनी असद के कबीले वाले आए और अब इमाम ने सवाल किया कि ये बताओ कि इस जगह का नाम क्या है, इस जगह का नाम क्या है। एक ने कहा युकालो लहा नैनवा, कि मौला इस जमीन का एक नाम नैनवा है। इमाम ने कहा कोई दूसरा नाम भी होगा। किसी ने कहा मौला युकालो लहा गाजरिया, मौला इसका एक नाम गाजरिया भी है। इमाम ने कहा कोई और नाम भी होगा। आप जानते हैं इमाम किस नाम की तलाश में है। एक ने कहा युकालो लहा शत्तुल फुरात, मौला इसका एक नाम शत्ते फुरात भी है। इमाम ने कहा नहीं, कोई और नाम भी होगा। कहा मौला ये तो वो नाम है कि जो हमें मालूम थे। कहा कि जाओ किसी और से पूछ कर आओ। कहा कि हम अपने एक बुजुर्ग से पूछ कर आते हैं, उसे लेकर आते हैं, जो बहुत बुजुर्ग है, बहुत बूढ़ा हो चुका है, वो अपने बिस्तर से उठ नहीं सकता है, हम उसे लेकर आते हैं, शायद उसे मालूम हो। और उस बूढ़े को वो लेकर आए, उठा कर लेकर आए और इमाम के सामने लाए। इमाम ने कहा कि ये तो वो नाम है नैनवा गाजरिया शत्त फुरात जो तुम्हारी कौम कबीले वालों ने मुझे बताए। ये बताओ कि क्या इस जगह को कोई और नाम भी है जो तुम्हारी मालूमात में हो। वो बूढ़ा कहता है कि मौला एक नाम है तो सही, मगर हमारे बुजुर्गों ने वो नाम लेना तर्क कर दिया। का नाम क्या है? का युकालो लहा करबो बला, मौला इसका एक नाम करबो बला भी है। कहा कि हाँ, यही जमीन जमीन करबो बला है, यहीं पर हमारी सवारियां रुकेंगी, यहीं पर हमारे खेमे लगाए जाएंगे, यहीं पर हमारा खून बहाया जाएगा, यहीं पर वो सारे वाकयात होंगे। कहा फरजंद रसूल आपका क्या इरादा है? कहा हम यहां पर रहना चाहते हैं और रहने के लिए इस जमीन को खरीदना चाहते हैं। करारदाद तय हुई। इमाम जब करारदाद कर रहे थे कि हम यहां पर रहना चाहते हैं और इस जमीन को खरीदना चाहते हैं, बनी असद वालों ने कहा कि मौला आप फरजंद रसूल हैं, जब तक जी चाहे आप रहिए यहां पर, हमारी तरफ से कोई एतराज नहीं है। कहा कि नहीं भाइयों, अब दो चार दिनों की बात नहीं है, हमें तो अब जिंदगी भर के बाद कयामत तक यहीं पर रहना है, हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर रहना है। कुछ चंद दिनों की बात थोड़ी है। जमीन इमाम ने खरीदी और अब उसके बाद इमाम उस जमीन को वापस बनी असद वालों को हिबा करते हैं, तोहफतन वापस करते हैं, मगर कुछ शराइत के साथ। इमाम कहते हैं कि जमीन खरीदने के बाद अब मैं तुम्हें वापस लौटा रहा हूं, मगर मेरी कुछ शराइत है। वो शराइत क्या है? का पहली शर्त यह है कि जब हम यहां पर कत्ल कर दिए जाएं, जब हम शहीद कर दिए जाएं, और अगर कोई हमारा जाहिर हमारी ज्यारत के लिए आए तो हमारी कब्र का निशान बनाना, उसे बताना, और तीन दिन के लिए हमारे जाहिर को यहां पर मेहमान रखना। अजादारों आप क्या सुन रहे हैं, हुसैन ने करबला पहुंचने के बाद आपको याद किया है, अपने अजादारों को याद किया है, अपने जायरों को याद किया है, बनी असद के लोगों, मेरे जायर को 3 दिन के लिए मेहमान बनाना। का मौला और क्या हुक्म है? का अगली वसीयत यह है कि जब यहां पर हमें कत्ल कर दिया जाए और यजीद के फौजी यहां से चले जाए तो हमारे लाशें यहां पर बेगोरों कफन पड़े होंगे, एक वादा करो कि इन फौजियों के जाने के बाद तुम आओगे और हमारे लाशों को दफन कर दोगे। हुसैन मजलूम को अपने लाशें की परवाह है, फिक्र है कि हमारे लाशों के दफन करने का कोई एहतमाम, कोई इंतजाम हो जाए। बनी असद के मर्दों ने हाथ जोड़कर कहा कि मौला हम वादा करते हैं कि हम आकर आपके लाशों को दफन करेंगे, हम वादा करते हैं। बनी असद के मर्द जाने लगे। अब इमाम हुसैन कहते हैं, ए बनी असद के मर्दों, जा तो रहे हो मगर जरा एक काम तो करो। कहा मौला हुक्म। कहा अपने घर की जरा खवातीन को तो भेज देना, अपने घर की औरतों को तो जरा यहां भेजना, मुझे उनसे भी कुछ काम है। बनी असद के मर्द घरों को वापस गए और अपने घर की खवातीन से कहा कि जाओ, तुम्हें फर्जंद रसूल ने याद किया है। बनी असद की औरतें अपने हिजाब को दुरुस्त करते हुए, अपनी चादरों को संभालते हुए कि फर्जंद रसूल ने हमें याद किया है, हमें ये शहादत मिलने वाली है, कोई काम रसूल का बेटा हमसे कहे। वो आकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, ए फर्जंद रसूल हमसे क्या काम है, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। कहा गया है बनी असद की औरतों, मुमकिन है कि हमारे कत्ल के बाद, फौजों के जाने के भी बाद, तुम्हारे मर्द इस खौफ से कि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे, हमें दफन करने के लिए ना आए, हमसे एक वादा करोगे। कहा क्या? कहा वादा करो कि जब फुरात के पास पानी भरने के लिए आओगी तो पानी भरने के बहाने से आना और एक मुट्ठी खाक हमारे लाशों पर डालकर हमारे लाशों को दफन कर देना। का ये वादा करती हो? बनी असद की औरतें कहती है कि मौला हम ये वादा करते हैं कि हम ये वादा करते हैं कि आपके लाशों को दफन करेंगे, उन्हें बेगोरो कफन इस तरह से जलती रेती पर पड़े नहीं रहने देंगे। अब वो जाने लगी। अब इमाम हुसैन कहते हैं, ए बनी असद की औरतों, जा तो रही हो मगर एक काम तो करो, जरा अपने घर के बच्चों को तो भेज देना। का मौला बच्चों से कुछ काम है? कहा कि हाँ बच्चों से कुछ काम है। बनी असद की औरतें गई और अब अपने बच्चों को इमाम हुसैन के पास भेजा। वो बच्चे इतना समझ रहे थे कि फर्जंदे रसूल है और हमें बुलाया है, करीब आए और आकर कहा अपने नन्ने नन्ने हाथों को जोड़कर के, ए फर्जंदे रसूल, ए आका, ए मौला, कि हम भी आपकी कुछ खिदमत कर सकते हैं। और अब हुसैन मजलूम के जुमले सुनिए, इमाम क्या कह रहे हैं। इमाम कहते हैं, ए बच्चों मुझसे एक वादा करते हो? का मौला क्या वादा? का इतना वादा करो कि अगर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे घर के बड़े, तुम्हारे घर की खवातीन अगर यजीद और यजीद की फौज के खौफ से हमें दफन ना करे, तो इतना वादा तो करो कि अगर तुम खेलते हुए यहां तक आओगे तो खेल खेल में एक मुट्ठी खाक उठाकर हमारे जिस्मों पर डाल देना, हमारे लाशों पर डाल देना, हमारी लाशों पर इस तरह से पड़े ना रहने देना। आपने गौर किया अजीजों कि हुसैन को अपने लाशे का कितना ख्याल है? मगर अजीजाने मोहतरम जरा गौर तो कीजिए, ये बच्चे लाश पर मुट्ठी खाक डालने के लिए आएंगे, ये औरतें दफनाने के लिए आएंगी, वो मर्द दफनाने के लिए आएंगे, तो क्या हुसैन का बेटा सैयद सज्जाद मौजूद नहीं होगा? जब ये काफिला चल रहा होगा, जब जा रहा होगा, सैयद सज्जाद को मौका ना मिल सके कि वो आगे बढ़कर लाशे को दफन कर सके, मगर एक मुट्ठी खाक डालने में कितना वक्त लगता है? अगर कोई सैयद सज्जाद से ये सवाल करे कि मौला आप खाक उठाकर क्यों नहीं डालते, तो हमारा मौला सज्जाद अपने हाथों को आगे करेगा कि जरा देखो तो सही कि जिसके हाथों में हथकड़ियां हो, जिसके पैरों में बेड़ियां हो, जिसके गले में तौके खारदार हो, अरे वो इतना मजबूर है कि अपने बाबा के जिस्म पर खाक भी डाले तो कैसे डाले। अला वलानतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुन क़लबी यनक़लिबून मातम हुसैन।